ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید شبیح العباس آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، شریک حیات جو پروگرام چل رہا ہے اس کے عنوان سے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کس طریقے سے کامیاب بنا سکیں۔ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں عالی جناب مولانا علی عظیم شیرازی صاحب، لہٰذا آئیے ہم سب مل کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولانا، ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہماری آواز پر آپ نے لبیک کہا۔
شکریہ بہت بہت کہ آپ نے بندہ حقیر کو دعوت دیا۔
مولانا، پچھلی گفتگو جو ہماری تھی، جو میں نے ایک سوال آپ سے کیا تھا پچھلے پروگرام میں، اس میں یہ تھا کہ پہلے زمانے میں طلاق کم تھا اور ہم تقریباً اپنی زندگی کو سمجھوتے کے طریقے سے گزار لے جاتے تھے۔ آج کے زمانے میں طلاق بڑھ چکا ہے، لیکن آج بھی ہم اپنی زندگی کو تقریباً سمجھوتا ہی سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم سامنے والے سے راضی ہو پائے تو زندگی گزاریں گے، ورنہ ہم بیچ ہی میں زندگی اپنی چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس رشتے ہی کو توڑ دیں گے۔ اور پچھلے زمانے میں ہم کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے پچھلی گفتگو ہماری ہوئی، ہم کبھی معاشرے سے ڈر کے، کبھی ماں باپ کی عزت کا خیال، کبھی خاندان کی عزت کا خیال، اور ہم اس زندگی کو آگے بڑھا لے جاتے تھے۔ کیا وہ صحیح تھا، یا آج جو ہے یہ صحیح ہے، یا اس کے علاوہ جو اسلام چاہتا ہے کہ ازدواجی زندگی سمجھوتا نہیں بلکہ ایک دوسری شے ہونی چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے بھی پروگرام میں اس بات کو روشن کرنے کی کوشش کی تھی کہ دو زمان اور مکان کا مقایسہ اگر کریں تو یوں مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اس زمان میں، اس مکان میں، اس کانٹیکسٹ کے اندر ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے، اور آج کے زمان و مکان کے اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن کیونکہ ہم رزلٹ پر بیس کر رہے ہیں،
جی،
تو رزلٹ کے مطابق تو ہم ابھی لاس میں جا رہے ہیں،
جی،
کیونکہ ناکامی زندگی میں زیادہ نظر آ رہی ہے، ڈیورس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ ہم پروگرس نہیں کر رہے، ماضی سے مستقبل کی طرف، کامیابی کی طرف نہیں جا رہے بلکہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب صرف بات یہاں پہ جو چھوٹی سی ہے، عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ اگر اس زمانے میں حقوق کی رعایت ہوتی تھی، اخلاقی چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا اور ڈیورس کم تھا، تو یہ بات اچھی تھی۔ اگر یہاں پہ بھی حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، اخلاقی باتوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، اس کے باوجود ڈیورس ریٹ بڑھ رہا ہے، تو یہ نقصان دہ، اس کا ہم یوں مقایسہ کریں گے۔ اسلام آ کے ہمیں دونوں زمانوں میں ایک پیغام دیتا ہے، اور سب سے پہلا پیغام ازدواجی زندگی کے حوالے سے وہ یہ کہ طلاق ایک بری چیز ہے، طلاق اچھی بات نہیں ہے،
ناپسند چیز ہے،
یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ شادی شدہ زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اسلام نے کیا پیغام دیا ہے، تو یہاں پہ ایک سوال ذہن میں خود اٹھتا ہے کہ اسلام کا شادی سے کیا مقصد ہے،
جی،
کیا پیغام ہے اسلام کا شادی کے بھی، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، خداوند کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ بس مقصد بتا دیا آپ کو کہ جو ہم نے آپ کو خلق کیا ہے، اس لیے خلق کیا ہے کہ آپ دونوں شادی کریں، زوج خلق کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ کو سکون حاصل ہو۔
جی،
مقصد خلقت جو ہے انسان کا، اور اس کے بعد ان دونوں کا امتزاج جو شادی کے ذریعے ہے، وہ کس لیے؟ کہ لی تسکن علیہ، تاکہ آپ کو سکون حاصل ہو۔
جی،
سکون حاصل ہوگا تو پھر بات آگے بڑھے گی، اگر سکون ہی نہیں حاصل ہوگا تو بات آگے کیسے بڑھے گی۔
جی،
اس لیے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ شادی کا اصل فلسفہ، شادی کا اصل مقصد جو ہے وہ سکون کا حاصل کرنا ہے۔ اور بھی مقاصد ہیں، نسل کا آگے بڑھنا ہے، انسان کی جسمانی ضروریات کا پورا ہونا ہے،
جی،
یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، مفکرین کا جو نظریہ ہے، وہ یہی ہے کہ اس آیت میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو اصل مقصد ہے شادی کا، وہ سکون کا حاصل کرنا ہے۔ اب اگر ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا سکون ایسے ہی حاصل ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے کھانا پک جائے گا؟ ایسے تو نہیں ہوگا نا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ تو جو سکون ہے وہ عورت کے وجود میں ہے،
جی،
جنس سے عورت میں سکون ہے، और मर्द को उससे सुकून मिलता है,
यानी खिलकत के अतबार से उसके अंदर ऐसी चीजें हैं कि मर्द को सुकून मिल
मर्द को
सकता
सुकून
है।
मिल सकता है, मगर ये कि वो अपने उस चीज़ पर बाकी रहे। अगर एक औरत अपनी असली हैसियत में बाकी रहे, अपनी हकीकत व फितरत के साथ बाकी रहे, तो वो मर्द के लिए बाइस सुकून है। अगर वो अपने उस हकीकत से हट जाएगी, अपनी फितरत से हट जाएगी, तो वो सुकून छिन जाएगा उस मर्द की ज़िंदगी से। और ये घर जो कि जन्नत, जिस मकसद के लिए उसने बनाया था कि उसे जन्नत मिले, ये जहन्नुम बन जाएगा। अब औरत क्योंकि मोहब्बत का पैकर है, तो मर्द से उसे मोहब्बत चाहिए। अगर मर्द उसे मोहब्बत देगा, तो उसको रिटर्न में सुकून मिलेगा।
जी
ये दो तरफ है,
जी
यानी वो उसको सुकून जब देगी जब उसे मोहब्बत मिलेगी, मर्द मोहब्बत जब दे पाएगा जब उसे सुकून मिलेगा।
यानी इस दवाजी जिंदगी में जितने मसाले हैं सब तरफ है नहीं है।
बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो इसी तरह ये हमें समझ में आए, ये बात हमारे लिए वाज हो जाए, रोशन हो जाए कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं।
जी
अब ये दोनों मिलकर एक ज़िंदगी गुजारने की बात कर रहे हैं और एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। आप मुझे वो दे रहे हैं जो आपको चाहिए और मैं आपको वो दे रहा हूँ जो आपको चाहिए,
जी
तो ये बात बनेगी। जैसे एक दुकान में हम जाते हैं, एक चीज़ हमें ख़रीदनी होती है, हम कहते हैं भैया हमें ये चीज़ दे दें, इसके बदले वो हमसे पैसे ले लेता है, हम उससे वो चीज़ ले लेते हैं। मियाँ बीवी की ज़िंदगी में भी ऐसे ही है, वो उसको मोहब्बत देता है, वो उसे सुकून देती है। ये पहला मामला है और ये आवामी मामला है, मोमिनीन मुत्तकीन का मामला इससे बढ़कर है। यानी जो सेंटर पॉइंट है ज़िंदगी का मोहब्बत, कि जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, जो कि ख़ुद कुरान की आयत आगे कह रही है कि मवद्दत की बात हो रही है जो कि मोहब्बत से आगे का एक मरल है, तो वो जो इस्लाम हमें मोहब्बत की बात कर रहा है, मवद्दत की बात कर रहा है, वो कंडीशनल मोहब्बत नहीं है,
जी
शर्तिया मोहब्बत नहीं है कि आप मुझसे मोहब्बत करेंगी तो मैं आपसे मोहब्बत करूँगा, आप मेरे लिए करेंगी तो मैं आपके लिए करूँगा, नहीं, वो तो देने वाली बात है। खुदावंद आलम अपने बंद मखलूक़ात से मोहब्बत करता है या नहीं करता? क्या शर्त लगाता है, नकदी मामला करता है? खुदा तो ऐसा नहीं करता। फिर हम जो खलीफतुल्लाह होने की बातें कर रहे हैं, हम जो अशरफुल मखलूक़ात होने की बातें कर रहे हैं, तो क्या ये हमें जेब देता है कि हम भी इतने आला मकाम पर पहुंचने के बाद भी हम यही काम करें कि हम भी नकदी की बात करें? ये हम इंसानों से जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, ख़ास तौर से जो हम अपने आपको मोमिन कहते हैं या मुत्तकी कहते हैं, तो ये हमारी शान के मुताबिक नहीं है। हमें तो खुदा को खुश करना है, हमारा मामला खुदा के साथ है। इसलिए मैं बेअनवान एक अच्छा शौहर, मैं
मोहब्बत
अपनी
करूं
मोहब्बत करूंगा मैं अपनी बीवी से, अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं भी करती तो मैं खुदा से दुआ करूंगा कि इसके दिल में मोहब्बत डाल दे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बेहतरीन शौहर बन सकूं, ताकि ये ज़िंदगी एक तकामुल की तरफ आगे बढ़े और हम एक दूसरे को आगे की तरफ लेके बढ़ें। तो ख़ुलासा मैं यूँ करूंगा कि इस्लाम का बुनियादी सेंटर पॉइंट, शादी का मकसद सुकून का हासिल करना है, लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। नतीजा क्या निकलेगा कि खुदावंद आलम ने इस सुकून के नतीजे में मवद्दत का बीज बो दिया है, जो दो तरफा मोहब्बत है और समझ कर मोहब्बत की जाती है, और ये मोहब्बत आगे चली जाती है, इसमें शिद्दत आ जाती है, तो ये मवद्दत बन जाती है, ये दोनों एक दूसरे से करते हैं। फिर रहमत खुदा भी नाजिल होती है, वह रहमत, इसकी तफसीर में बाज़ मुफस्सिरीन लिखा है कि औलाद खुदा आपको अता करता है, रहमत नाजिल होती है, रिस्क में इजाफा होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इस आयत का ख़ुलासा हम यूँ करेंगे कि इस्लाम के नज़दीक शादी का बुनियादी मकसद दोनों को सुकून देना है, उनके दरमियान मोहब्बत और मवद्दत पैदा करनी है, और खुदा की रहमत नाजिल होनी है। ऐसी फिजा अगर घर की बन जाएगी तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी?
एक जन्नत से
जन्नत की ज़िंदगी होगी ना। तो ये ज़िंदगी तो हमें गुजारनी है। जैसे कि हमने पहले भी अपने नाज़रीन की खिदमत में बात पेश की थी कि एक मोमिन इंसान की जो दुआ होती है वो यही दुआ होती है ना कि मेरी ज़ौजा और मेरी औलाद मेरी आँखों की ठंडक हो, कुर्रत आयुनैन। और फिर खुद वो शख्स ये दुआ करता है कि मुझे जो है मुत्तकियों का इमाम बना दे। तो यानी एक मोमिन की दुआ यही होती है खुदावंद आलम से कि खुदा मुझे एक ऐसा शरीक हयात अता कर कि जो मेरी आंखों का ठंडक बने, मेरी औलाद मेरी आंखों का ठंडक बने। तो हम ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इस्लाम ऐसी ज़िंदगी का तसव्वुर देता है। इंशाल्लाह आगे अहादीस भी हम आपकी खिदमत में
अपनी
पेश करेंगे,
ज़िंदगी बहिश्त नुमा बना दें।
तो वो हम क्यों नहीं बना पाते?
यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जैसा कि अभी आय शरीफा आपने पढ़ी, उसमें ये कि आप ताकि इसलिए शादी करें ताकि आप सुकून पा सकें।
जी
उसके आगे की आयत का तर्जुमा ये कि मसलन अल्लाह ने आप लोगों के दिलों में मवद्दत
जी
करार दे दी है। जब अल्लाह ने मोहब्बत हमारे हमारे कुलूब में डाल दिया है
जी
तो हमारी ज़रूरत यह है कि हम मोहब्बत करें,
सही
लेकिन
है।
हम मोहब्बत कर नहीं पाते और हमारी वही वही बुरी चीज़ तक हम पहुंच जाते हैं, मग़ज़ूब चीज़ तक,
जी
तलाक तक,
जी
जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। तो उसके अवामिल क्या हैं कि हम मोहब्बत को अपनी तलाश नहीं कर पाते?
ठीक है। पहली बात तो ये कि इस्लाम ने कुछ शरायत और मेयारात दी हैं शादी के।
जी
अगर उन शरायत और मेयारात पर आप शादी कर रहे हैं तो ये बात मवद्दत की आएगी। अगर आपने इस्लाम के मेयार के मुताबिक वो किए ही नहीं, यानी एक शख्स एक लड़की से शादी करना ही नहीं चाहता और उसका अक्त पढ़ दिया गया, तो इस्लाम के नज़दीक तो शादी सही नहीं है, वहाँ ये मवद्दत की बात भी नहीं आएगी। ज़बरदस्ती तो मवद्दत होती भी नहीं है, अनकंडीशनल है ना ये, तो ज़बरदस्ती कैसे हो सकती है। तो कुरान की आयत को समझने की ज़रूरत है, यानी इस्लाम ने आपको बताया कि आप इस्लाम के मेयारात के मुताबिक अगर शादी करेंगे और उस पर राजी होंगे, क्योंकि शर्त ये शर्त लाजिम तो यही है ना कि लड़का लड़की दोनों राजी हों।
राजी
अब दोनों राजी हैं और शादी हो रही है तो मवद्दत डाल दी जाएगी, और मवद्दत का बीज बो दिया जाएगा। जो तफासीर हैं वो यही बताती हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अब इसको डिवेलप करना ये इन दोनों का काम है। तो पहले दिन से इतना बड़ा जो है मोहब्बत का टुकड़ा नहीं आ जाएगा, मवद्दत का
जी
नहीं, छोटा सा, इसको बड़ा करना है। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में साथ रहते रहते इसको एक बीज को तनावर दरख्त और फल फूलने वाला दरख्त की शक्ल में लेकर आना, ये मियाँ बीवी का काम है, उनके फैमिलीज़ का काम है। ठीक है, तो ये बात हमारे जहन में रहे
यानी
कि
पहले से हम इस तरीके से अपने आप को तैयार पाएं कि हाँ, जिसके साथ हमारी शादी हो रही है हमसे पूछा गया और अपने जहनी तौर पर हम आमादा पा रहे हैं कि फला इंसान के साथ हमारी शादी हो रही है।
जी, और हम तैयार हैं,
जी
खुशी के साथ इसको कबूल कर रहे हैं,
जी
तो ये कामयाबी की अलामत होगी और कामयाबी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे
जी
और ये आयत उसका मिसदाक बनेगी। लेकिन अगर कोई शख्स शुरू से इख्तलाफ रखता है तो वहाँ तो सुकून ही नहीं होगा, पहले मरहले में सुकून कहाँ, सुकून ही नहीं होगा, वो तो इख्तलाफ रखता था शुरू से। ठीक है, मगर ये कि कोई मुआवजा हो जाए, कोई ऐसा हो जाए कि इंसान के दिल मगलूब हो जाए और फिर उससे मोहब्बत करने लगे, ये एक बात। दूसरी बात ये कि कैसे हम करें, तो सबसे पहली चीज़ ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मोहब्बत वाली जो बात जो कुरान करीम ने फरमाई है, ये सुकून वाली बात जो कुरान करीम ने फरमाई है, इसके लिए शख्सियत में के लिए ज़रूरी है कि इंसान उन बातों को जानता हो, इल्म रखता हो। बगैर जाने तो नहीं हो सकता ना कुछ, यानी मैं बैठे बैठे चाहूँ कि सब कुछ हो जाए तो ये तो नहीं होगा। बैठे बैठे इंसान मालदार भी नहीं हो सकता, उसको कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ता है,
हासिल करने के लिए।
कुछ ना कुछ जस्तजू तलाश सही कोशिश उसे करनी पड़ती है। तो पहला मरहला, अगर कोई नौजवान चाहता है कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाए तो पहली चीज़ है कि वो इल्म हासिल करे। अल इल्म नूरुन यग़ज़िफ़ुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा, इल्म एक नूर है ना, वो एनलाइट करता है आपको। तो हमें इल्म हासिल करना पड़ेगा, ख़ास तौर से इलाही इल्म, कि कैसे हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाते हैं और अपने शरीक हयात के साथ हम कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, दीन ने हमें क्या बातें बताई हैं।
जी
ये बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। फिर नॉलेज जो है वो पावर भी है, वो आपको पावर भी अता करती है, रोशनी भी अता करती है, कुव्वत भी अता करती है। तो जब आपके अंदर रोशनी भी होगी कुव्वत भी होगी तो आप समझ सकेंगे ना। देखिए वो अगर जैसे नूर है कि उसकी जो तारीफ़ करते हैं मंतिक में, ज़ाहिर उन लज़ात मोज़हिर उन लग़ैर है, कि वो क्या करती है, अपने ज़ाहिर में भी रोशन है और दूसरी चीज़ों को भी मुनव्वर करती है।
सुभान अल्लाह।
तो अगर मैं इल्म हासिल कर लूँगा तो मेरे लिए सामने वाली की शख्सियत बहुत रोशन होगी, जब बहुत रोशन होगी तो मेरे लिए उसको समझना बहुत आसान होगा,
जी
मेरे लिए उसको हैंडल करना बहुत आसान होगा। एक खूब अंधेरे कमरे में आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, इस खौफ के मारे कि मैं टकरा ना जाऊँ, कोई चीज़ टूट ना जाए, मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि अतराफ में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा,
मालूम ही नहीं हो पा रहा
मालूम ही
है।
नहीं। लेकिन अगर उसी कमरे में रोशनी हो जाए तो आपको हर चीज़ का पता है, आप ना उसको तोड़ेंगे ना फोड़ेंगे ना ख़राब होगी चीज़, आप एहतियात से आराम से अमल करेंगे। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमें मालूम नहीं होता कि कहाँ गलती हो जाती है, कहाँ हम खतरे में हैं, कैसे एहतियात करना है, नाजुक चीज़ को कैसे संभालना है, सही चीज़ को कहाँ रखना है। तो हम गलत स्टेप्स लेते हैं जिसकी वजह से हम मुश्किल में गिरफ्तार होते चले जाते हैं।
जी
इसलिए पहला मरहला तो ये हो गया इल्म हासिल करने का। वो स्लाइड में हमने वो चीज़ें यहाँ बयान की, इंशाल्लाह नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये कि वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, अगर इल्म हासिल करना है तो इल्म के सोर्सेज कौन कौन से हैं। इंसान के वजूद में तीन सोर्सेज हैं इल्म हासिल करने के, ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि ये हमेशा काम आएंगे हमारे नाज़रीन के, चाहे वो इज़दवाजी ज़िंदगी में हो या गैर इज़दवाजी ज़िंदगी में। तो इंसान के अंदर जो पहली सोर्स है ना, वो उसके हवासे खमसा है,
जी
आँखों के ज़रिए, कान के ज़रिए, टच के ज़रिए, फाइव सेंसेस, इन फाइव सेंसेस के ज़रिए वो इल्म को हासिल करता है।
जी
ठीक है ना, इसको साइंटिफिक दुनिया में साइंस का नाम दिया जाता है, कि साइंस जिस तरीके से इल्म को हासिल करती है, जिसको कहते हैं डिडक्टिव रीजन ऑफ, कि हम तजुर्बे के जरिए इल्म हासिल करें, आप तजुर्बा करते हैं और इल्म हासिल करते हैं, वो हवास खमसा से ही होता है।
जी
तो एक तरीका इल्म हासिल करने का हवास के जरिए, जो जाहिरी है,
हम महसूस करके
हम महसूस
देखते
करते हैं। इस पर पूरी साइंस बेस बेस इसी पर करती है, जो फिजिकल वर्ल्ड की बातें करती है, इसी पर रिसर्च होता है, इसी पर किताबें लिखी जाती हैं, इसी पर शख्सियत को डिफाइन किया जाता है।
जी
यानी आज जो साइंटिफिक तरीका है इंसान को डिफाइन करने का, वो हवास के जरिए। इससे हम आगे बढ़ते हैं अगले मरहले की तरफ, जो इससे आला दर्जे का है, वो अक्ल है। खुदावंद आलम ने इंसान को अक्ल अता की है, कि जो अनसीन को सीन करता है, अक्ल का काम भी यही है, कि नामालूम चीज़ को मालूम करता है। एक्स की वैल्यू, जो मैथमेटिक्स में हम एक्स की वैल्यू मालूम करते हैं, वो इसी तरह होता है, कि हम हवास की मदद से उन चीज़ों को भी ढूंढ लेते हैं जो नज़र नहीं आ रही होती।
जी
तो एक अच्छा शख्स जो होता है, जो अकल रखता है, अकलमंद होता है, वो अपने इज्दवाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए फ़िक्रमंद होता है, और गौर फिक्र करता है अपने लाइफ पार्टनर के बारे में।
महसूस करेगा क्या हो, उसकी जरूरत क्या है।
मिसाल के तौर पे एक हैवान है, वो दर्क कर सकता है, लेकिन दर्द रखता है या नहीं रखता, ये एक और मरहला है। इंसान में एक हैवान में फ़र्क ये है, कि इंसान दर्क करता है और दर्द भी रखता है, और फिर दवा के लिए भी आगे बढ़ता है,
जी
सिर्फ दर्क करके छोड़ नहीं देता। लेकिन हमारी इस दिवाली ज़िंदगी में दर्क भी नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, बजाय इसके कि वो अपने लाइफ पार्टनर और अपनी ज़िंदगी को दर्क करें, उसको समझें, उसको महसूस करें, वो चाहते हैं कि हम अपनी बात महसूस करवा दें,
जी
और उसके अंदर उसको क्या तकलीफ़ हो रही है, उसे क्या परेशानी है, उसका क्या टेंशन है, वो हम महसूस ही नहीं
महसूस
करते।
नहीं करते हैं।
तो फिर हमारी ज़िंदगी, तो फिर हम इस ज़िंदगी से कामयाबी की क्या तवक्को कर रहे हैं। ठीक है, तो अकल का एक मरहला हो गया, अकल के अपने काम है, वो यहाँ गुफ्तगू नहीं करनी मुझे इस मौजू पर। इसके बाद तीसरा मरहला है कल्ब का, जिसे कल्ब सलीम कहते हैं,
जी
जिस पर वही नाजिल होती है, जिस
जी
पर इल्हाम होता है।
जी
ये भी एक मरहला है इंसान के प्योरिफिकेशन का, कि वो अपने आप को प्योरीफाई करता है, और इसके ज़रिए भी उसके अंदर उसको इल्म हासिल होता है। इत्तकुल्ला व युअल्लिमुकुमुल्ला, तुम तकवा अख्तियार करो, खुदा तुम्हारा मुअल्लिम बन जाएगा, वो तुम्हें गाइडेंस करना शुरू कर देगा, वो तुम्हें हिदायत करेगा। तो अगर हम ये तीन सोर्सेज जो इंसान के अंदर मौजूद हैं, इससे वो इस्तेफादा करें, सही इसको सही बरूए कार लेकर आए, तो अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं।
जी
उसके बाद चौथी चीज़, कि जो उसकी ज़ात का हिस्सा नहीं है लेकिन बाहर से आती है, वो है वही कुरान करीम, उसमें हिदायत मौजूद है, हिदायत की किताब है ना,
जी
हुदल्लिन्नास, हिदायत के लिए आई लोगों के लिए, उसमें बातें ऐसी मौजूद हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी बनाने का तरीक़ाकार बता रही है। और इसके साथ साथ आपके पास कुरान करीम के साथ अहादीस मौजूद हैं, जो इसके कॉम्बिनेशन से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी बना सकते हैं, क्योंकि कुरान किसके लिए आया है,
हिदायत बशरियत के लिए।
तो हम क्यों इस्तेफादा नहीं कर रहे इससे, हम क्यों फ़ायदा नहीं उठा रहे इससे। अच्छा भाई, कुरान करीम हमारे पास है, ठीक है, किताब ही है खाली, हम कहते हैं सिर्फ किताब नहीं, हमारे पास रोल मॉडल भी मौजूद हैं, इल्म भी है और उसका प्रैक्टिकल रोल मॉडल भी मौजूद है, आइमा,
जी
अंबिया, ये ज़िंदगी हमारे सामने मौजूद है, कि ये वो लोग हैं जो कुरान का अमली नमूना है। तो फिर हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हम इनकार ही नहीं कर सकते इस बात से कि हमें मालूम ही नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं है। भाई सोर्सेज आपको पता है, किताब आपके पास, मैनुअल आपके पास मौजूद है, रोल मॉडल आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब इसके बाद का क्या मरहला है, रोल मॉडल्स तक तो आपको मिल गया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान कमाल तक पहुंचना चाहे और उसके पास रोल मॉडल ना हो,
जी
कैसे पहुंचेगा। एक थ्योरी,
जरूरी है जी
प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए ना,
जी
प्रैक्टिकल भी मौजूद है।
सुन्नत जी
अब क्या बात हो गई, बात ये थी जो हमने पहले फरमाया था, कि अय्युकुम अहसनु अमला, बेहतरीन अमल का मुकाबला है। अगर बेहतरीन शादी ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपके पास रोल मॉडल्स मौजूद हैं, अम्बिया की सूरत में और आइम्मा की सूरत में, कुरान करीम में वाकयात मौजूद हैं, क़िससुल अम्बिया मौजूद है,
जी
ये सब कुछ मौजूद है आपके पास, आपके गौर फिक्र स्टडी करने की ज़रूरत है।
जी
तो बस जो कुरान करीम ने और जो अहादीस में बातें मौजूद हैं, कि क्या चीज़ वाजिब है और क्या चीज़ मुस्तहब है, इस पर अगर आप अमल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आप एक कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये बेसिक्स पे ही अमल नहीं करेंगे, तो ये तो पहला कदम ही आप सही तय नहीं कर रहे होंगे। वो बातें जो हम आगे जाके बताएंगे, वो इस इसी के सिलसिले की आगे की बातें, लेकिन ये फंडामेंटल चीज़ें तो हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए,
जी
ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले मरहले में हम इल्म हासिल करें, उसके बाद हम अपने तमाम सोर्सेस से इल्म हासिल करें और कुरान और अहादीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारें, अम्बिया और आइम्मा की ज़िंदगी को अपना रोल मॉडल बनाएं और देखें कि इन्होंने किन वाजिबात और मुस्तहबात पर अमल किया, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकें।
जी
जी
मौलाना, आपने अवामिल की तरफ तवज्जो दिलाई और इंशाल्लाह हमें तो फ़ायदा हुआ है और दूसरे मेरे नाज़रीन को भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।
इंशाल्लाह,
लेकिन चूंकि आज की यही गुफ्तगू हम यहीं पर रोकते हैं, चूंकि वक्त नहीं है, इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में फिर आपको दावत दी जाएगी और इंशाल्लाह फिर यहाँ पर आप तशरीफ़ लाएंगे, लिहाजा आज की गुफ्तगू को हम यहीं रोकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपसे ये गुजारिश है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इसको ज़रूर आप अपने नज़र हमें ज़रूर दें और हमारे ईमेल एड्रेस पर आप अपने नज़रियात भेजें, और इंशाल्लाह आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम ज़रूर लिखते रहिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान शबुल अब्बास को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।